सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत बिहार झारखंड के इस प्रांतीय संत समागम के अवसर पर आप सभी भरपूर उत्साह के साथ उपस्थित हुए हैं। पिछली मर्तबा समस्तीपुर में ऐसे ही समागम का आयोजन हुआ था और इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों के ऊपर प्रांतीय समागमों का आयोजन होता आ रहा है, जहाँ पर भक्त पूर्ण उत्साह के साथ श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से युक्त होकर इस परोपकार में भी अपना योगदान लगातार देते आ रहे हैं। अभी नवंबर के महीने में दिल्ली में सालाना संत समागम, जिस पे कि सभी प्रांतों से भक्तजन पहुँचे, झारखंड बिहार से भी काफ़ी बड़ी तादाद में नुमाइंदगी हुई और उसके बाद दिसंबर के महीने में भक्ति पर्व का आयोजन और जनवरी में मुंबई में महाराष्ट्र का संत समागम 3 दिवसीय, तो इस तरह से ये लगातार ऐसे विशाल आयोजन ये होते चले जा रहे हैं। और आज यहाँ पर पटना शहर के इस इलाके में ऐसा ही संतों का ये संगम, जो एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, ऐसा भव्य रूप, जो एक सुंदर वातावरण जहाँ पर प्यार की महक पूरी पूरी महसूस हो रही है। दुनिया में जो दृश्य हैं, संसार की दुर्गंध, वो तो हम महसूस करते ही आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेम नहीं, वहाँ पर घृणा, नफ़रत, जलन, संकीर्णताएँ, खुदगर्जियाँ वो प्रबल हैं, इसलिए वहाँ पर दुर्गंध है। और यहाँ सुगंधमयी वातावरण इसलिए है क्योंकि केवल और केवल प्रेम। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ये इस प्रकार से पंडित सही मायनों में जो प्रेम करना जानते हैं, जो प्रभु से प्रेम केवल प्रभु की जय जयकार करके या उसके नाम के रटन करके नहीं प्रदर्शित करते हैं, बल्कि ये प्रभु से प्रेम अपना प्रकट करते हैं इसी प्रभु के बंदों से प्यार करके। और तमाम वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने यही एक प्रभु की सच्ची इबादत का ढंग बताया है कि अगर इंसान के हृदय में दूसरे इंसान के प्रति सद्भाव नहीं है, अगर इंसान एक दूसरे के ऊपर कुर्बान जाना नहीं जानता है, जैसे वो पंक्तियाँ अरसे से आप सुनते आ रहे हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो अपने लिए तो जीते हैं इंसान, ये नहीं कि केवल इतनी बड़ी खलकत का हिस्सा होकर, बल्कि एक परिवार का अंग होकर भी अपनी खुदगर्जी तक सीमित रहते हैं। खून का रिश्ता हम कहते हैं, ये मेरा सगा भाई, ये मेरी सगी बहन, ये मेरी माता, ये मेरे पिता। तो खून का रिश्ता होने के बावजूद उसमें भी खुदगर्जियाँ कितनी जागती जा रही हैं। भाई भी इतना खुदगर्ज हो जाता है कि अपने ही दूसरे भाई का हक छीनने में लगा हुआ है, पिता की जान बेटा ले रहा है कि ये कहीं पर अपनी विल दूसरे भाई के नाम ना कर जाए। तो इस कदर ये एक ऐसा एक भाव, ये जो दुर्गंध का रूप बना हुआ है, जो घुटन दे रहा है, जो धरती को कलंकित कर रहा है, ऐसी ऐसी चाल इंसान चल रहे हैं। और महापुरुषों ने प्यार, निष्काम सेवा, दूसरे के काम आने के जज्बे, इनको ही प्रधानता दी है। तो आज भी यहाँ पर जो भाव शब्दों के रूप में आपने श्रवण किए, चाहे वो मैथिली भाषा हो, चाहे वो भोजपुरी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो या अंग्रेजी भाषा हो, छोटे बच्चे की रसना से, जवान बुजुर्ग की रसना से, बहन की रसना से, सब ने एक ही संदेश और पैगाम दिया है, जिसकी महत्ता तीन काल है। सतयुग में भी महत्ता थी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और कलयुग में भी उसी की महत्ता है। जैसे सूर्य का महत्व हर युग में एक जैसा रहा है, ये नहीं कि युगों के बदलने से सूर्य की अहमियत बदलती गई है, जल की अहमियत बदलती गई है। सतयुग में भी जल की आवश्यकता रही है और आज भी जल के बगैर गुजरान नहीं है। तो ये इस कुदरत के लिहाज से जब हर युग में, हर दौर में ये कुदरत के सिलसिलों की अहमियत रही है, तो ये भी जो भाव जिनको महापुरुष संत जनों ने उत्तम माना है, इनकी अहमियत भी हर युग में रही है और आज भी उसी की अहमियत है। आज भी उजाले की अहमियत है। अंधकार भले ही फैला हुआ हो चारों ओर, लेकिन महत्व तो उजाले का ही है। एक दीप जला हुआ हो उसका महत्व है, और उजाला एक अंधकार चाहे जितना मर्जी फैलाव में हो उसका महत्व नहीं, क्योंकि उसका फैलाव है। क्योंकि ऐसे विपरीत रास्ते पे चलने वाले बथेरे हैं, इसलिए कहीं पर ये कोई मेजॉरिटी या माइनॉरिटी की बात नहीं है। ये तो है अहमियत किस बात की है। अहमियत है उस भाव की जो प्यार वाले भाव हैं, जो करुणा दया वाले भाव हैं, उनकी अहमियत है। और जो इनको अपना लेते हैं वो अहम हो जाते हैं। कोई दौलत के कारण अहम नहीं हो जाता है, कोई राज सत्ता मिल जाए तो इसलिए अहम नहीं हो जाता है, कोई बहुत लंबी चढ़ी चौड़ी पढ़ाई लिखाई कर ले तो अहम नहीं हो जाता है। वो लाख सम्राट हो जाए, लाख कोई पोजीशन वाला हो जाए, उसकी रत्ती भर अहमियत नहीं अगर उसके पास ये दौलत नहीं है, प्यार वाली दौलत नहीं है, दूसरे का सत्कार करने वाली दौलत नहीं है, जो इस नाम की दौलत से वंचित है, जो संसारिक ही खेल सारी उम्र खेलता रहता है, वो कहीं का भी अहमियत रखने वाला नहीं है। अहम वो है जो वास्तविकता में ऐसी सुंदर भावनाओं से युक्त होकर जीवन के एक एक श्वास को बिताता है। वो इस कदर फिर धरती को सजाता है, संवारता है। यहाँ पर भी आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं कि वैर विरोध मिटाते जाएं और धरती का गुलशन महकाएं, कि वैर विरोध को मिटाते जाएं और धरती का गुलशन महकाएं। और गुलशन महकता है फूलों के द्वारा, फूलों के द्वारा, फूलों की सुगंध, फूलों की महक, फूलों की खूबसूरत, सुंदर सी क्यारियां सजी हुई हैं फूलों से, रंग बिरंगे रंगों के फूल, और वो एक ही क्यारी में रह लेते हैं। और वैर विरोध करने वाले वो एक दूसरे को एक आंख भाते नहीं है। ये पगड़ी वाला है टोपी वाले को भाएगा नहीं, ये टोपी वाला पगड़ी वाले को भाएगा नहीं, ये उर्दू फारसी वाला ये संस्कृति वाले संस्कृत वाले को भाएगा नहीं, ये संस्कृत वाला अरबी बोलने वाले को भाएगा नहीं। इस कदर लिबासों के आधार पर, खान पान के आधार पर, संस्कृतियों के आधार के ऊपर, जाति पाति के ऊपर, मजो मिल्लत की दीवारें खड़ी करके ये वैर विरोध ही किए चले जा रहे हैं, तो कहां पर गुलशन महकेगा, कहां पर ठंडक मिलेगी, कहां पर सुकून मिलेगा, कहाँ पर चैन मिलेगा? तो चैन प्यार के कारण है। इस धरती के गुलशन की खूबसूरती बढ़ाने का एक ही ढंग है कि प्यार से जिए, मिलवर्तन हो, भले ही हमारी भाषा जुदा हो, भले ही हम किस परिवार में पैदा हुए हों, भले ही हम किस पैगंबर के प्रति आस्था रखते हैं, इसका कुछ भी महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हम इस कदर मिलवर्तन के भाव से युक्त होकर जिए। ये चार दिनों की जिंदगी, ये कितनी सीमित सी जिंदगी है हमारी। ये जैसे कहा है कि ये तन काचा कुंभ है, लिए फिरे तो साथ, फीका लागे टूटेगा कछु ना आयो हाथ। कि ऐसा एक कुंभ, एक घड़ा, एक गागर मिट्टी की बनी हुई, एक कंकर लग जाए तो सब कुछ बिखर जाता है, कोई जल पानी उसमें रहता नहीं है। तो ये तन काचा कुंभ है, ये भी तेरा कच्चा घड़ा। तो चार दिनों की जिंदगी है, ये चार दिनों की जिंदगी इंसान क्या नफरत करते हुए इसको जीना है? क्या इस धरती को और बिगाड़ देकर यहाँ से रुखसत होना है? क्या धर्म को भी बदनाम करके यहाँ से जाना है? क्या धर्म से भी आस्थाएं टूटती चली जाएं, वो कर्म करने हैं? इतने कठोर और निर्दयी बनना है? मज़हब का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर क्या इसी तरह से तू इबादत करेगा प्रभु की, अल्लाह की, खुदा की? हरगिज़ ये किसी पैगंबर ने ये रास्ता नहीं बताया है, ये ढंग, ये सलीका नहीं बताया है। उन्होंने इबादत का ढंग, जीवन जीने का ढंग जो बताया है, इंसान काश उस ढंग को अपना ले, उस विधि को अपना ले, उस तरीके को अपना ले, तब तो ये निकल जाएगा, फिर तो इसका पार उतारा हो जाएगा, फिर तो ये शिखरों तक पहुंच जाएगा, फिर तो इसका संसार में आया हुआ सफल हो जाएगा। वरना तो खाली आया और खाली नहीं गया, ये बोझ और डाल कर गया। ये बोझ उतारने का वक्त है। इंसानी जन्म मालिक ने दिया, ये सुनहरी अवसर दिया, ये बोझ उतारने का वक्त था। ये आत्मा पता नहीं कब से क्या क्या बोझ ढोते आ रही है और हर जन्म में और बोझ बढ़ा लेती है। सबसे बड़ा तो अज्ञानता वाला बोझ, ना मूल की पहचान, ना स्वयं की पहचान। तो आत्मा भी आवागमन के बंधन में पड़ी हुई है और इसी आत्मा को ये सुनहरी अवसर मिला, जब इंसानी जन्म मिल गया, ये इंसानी तन में ये आत्मा आ गई और इसके लिए ये बड़े भाग्य हो गए, इसको सुनहरी अवसर मिल गया मंजिल मकसूद पाने के लिए और अपने आप की असली पहचान करने के लिए और जन्मों जन्मों के बोझ और बंधनों से निजात पाने के लिए। तो अगर ये भी ना करे तो फिर इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा? अक्सर हम दुनियावी पदार्थों के और अन्य सिलसिलों के कारण कह देते हैं, नुकसान हो गया है, ये जानी नुकसान हो गया है, ये माली नुकसान हो गया है, जान माल का नुकसान हो गया है, मेरी इज्जत का नुकसान हो गया है। तो उस लिहाज से हम नुकसान और लाभ सोचते, नापते, तोलते रहते हैं। लेकिन इससे बड़ा और नुकसान क्या होगा कि जन्मों जन्मों से आत्मा इसी प्रकार से बोझ ढोते आ रही है और सुनहरी अवसर मिला भी और वो भी हाथों से गंवा दिया। इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा? बाकी तो सब कुछ हो जाता है, निद्रा, भोजन, भोग, भय, ये पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नर में ज्ञान बिना पशु जान। ये बाकी सिलसिले तो अन्य योनियों में भी थे, लेकिन इंसानी योनि में जो सबसे अधिक महत्व रखने वाले पहलू हैं, वो जानवर और पशु नहीं निभा पाएंगे, वो तो इंसानों ने ही निभाना है उसे, और इसलिए तमाम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ वो इंसानों को ही संबोधित हैं, वो इंसानों को ही संदेश दे रहे हैं, किसी घोड़े चीते शेर को नहीं दे रहे हैं, वो इंसानों को ही। रामचरितमानस इंसानों के लिए, गीता का उपदेश इंसानों के लिए, बाइबल का संदेश इंसानों के लिए, पाक कुरान का संदेश इंसानों के लिए, ये जो पांच तत्व के बने हुए हैं पुतले सारे, और इनमें नूर आत्मा के रूप में बसता है। हर किसी का मन है, अगर तन है आत्मा है तो मन भी है, मन को संवारना आत्मा को सजाना यही हर किसी के लिए ये लाजिम और ज़रूरी है। तो इसलिए महापुरुष संत जन ये दोहराते चले जा रहे हैं और दोहराना पड़ता है। अक्सर कई कह देते हैं हो गया ना, बस एक बार बता दिया, तो ये उनके लिए जो मान लेते हैं, लेकिन बार बार दोहराना उनके लिए होता है जो नहीं मानते, एक बार नहीं मानते, दूसरी बार भी नहीं मानते, यहाँ तक कि सतयुग में नहीं माना, द्वापर में नहीं माना, त्रेता में नहीं माना, द्वापर में नहीं माना, कलयुग में नहीं माना। नाम मानने वाले रहे हैं, और इस जिंदगी को जीते हुए भी हम देखते हैं कि कहाँ मानते हैं। अपने ही बच्चे को कई दफ़ा हम कहने लग पड़ते हैं कि सालों साल हो गए हैं, समझाते आ रहे हैं, नहीं समझ रहा है, सुबह से इसको उठा रहे हैं, नहीं उठ रहा है, सूरज सर पे चढ़ाया है, बार बार उसको झिंझोड़ते हैं जाकर। तो क्यों ना दोहराना पड़ेगा, अगर इंसान इतनी सरलता से और सहजता से इस बात को समझ जाए और मान ले, तो फिर कतई ज़रूरत नहीं है इसको दोहराने की। लेकिन ज़रूरी रहा, हालांकि सतयुग का महत्व, लेकिन उसके बाद त्रेता में भी ज़रूरत रही, क्योंकि सतयुग में भी नहीं समझे, और त्रेता में नहीं समझे सब, तो द्वापर में भी कहना पड़ा, दोहराना पड़ा ये पाठ, और कलयुग में भी इसी तरह से ये जागृति लगातार गुरु पीर पैगंबर देते आ रहे हैं। क्योंकि इंसान इस कदर गहरे में इसकी अज्ञानता, इसकी प्रवृत्तियाँ, इसकी फितरतें, ये इस कदर गहरी हैं कि इतनी आसानी से नहीं उभरता है। इसीलिए महापुरुषों का, संतों का कार्य और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी सी आग लगी हो तो उसको संभालने में इतना जतन नहीं करना पड़ता, अगर आग को इतना फैलाव मिल जाए और कठिन हो जाता है कार्य। इसी तरह से ये अज्ञानता, ये संकीर्णताएँ, ये खुदगर्जियाँ, ये लालसाएँ, ये वैर, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, ये सब कुछ इतना बढ़ चुका है, इसलिए संतों का भी कार्य और बढ़ जाता है और इनको योगदान देना पड़ता है। तो ऐसे परोपकार में योगदान देने वाले हरि की दरगाह में ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। वाकई वो धरती के ऊपर बोझ नहीं होते, बल्कि वो धरती के लिए वरदान बन जाते हैं। जो इस कदर आप भी संभलते हैं, औरों को भी संभालते हैं, आप भी भवसागर से पार उतरते हैं, औरों को भी डूबने से बचाते हैं, आप भी वो इंसानियत की डगर पर चलते हैं और दूसरों को भी दानवीय चाल छुड़वा कर मानवीय चाल चलाने में सहयोग देते हैं, इस कदर उनका ऐसा महत्व होता है जिनकी महिमा हमेशा हमेशा गाई जाती है, उनका रुतबा हमेशा बुलंद रहता है। वही हैं जो चमकते हुए सितारे होते हैं, वही हैं जो हरि की दरगाह में उनको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती है, उनका मुख उजला होता है और उनको शाबाशी मिलती है। तो ऐसे रूप इस धरती के ऊपर बढ़ते चले जाएं, इसी भाव से महापुरुष संत ये योगदान ये देते चले जा रहे हैं। तो आओ सत्संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जनों की वाणी, महापुरुषों के संदेश, वो इसी तरह से हर इंसान मानव को ये पुकार पुकार कर कहते आ रहे हैं कि कहाँ भूले और रे झूठे लोभ लाग, कछु बिगड़े हो नाहीं अबू जाग, कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी जाग जा, अभी भी तो संभल जा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जितनी देर तेरे श्वास है इन श्वासों के होते हुए, अभी भी तू संभल जा, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हो गया है, अभी भी तेरे पास अवसर है, इस अवसर का अभी भी तू लाभ उठा सकता है, अभी भी तू अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, अभी भी तेरी सोच को बदलाव मिल सकता है, अभी भी साकत सज्जन बन सकता है, अभी भी बहकी हुई भटकी हुई चाल संभली हुई चाल बन सकती है। इसलिए कहते हैं कि जितनी देर तेरे श्वास हैं, इन श्वासों के होते हुए इंसान तू संभल जा, इस मंजिले मकसूद को पा ले, अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ले, इंसानी चाल को चल ले, नफरत को तज दे, प्यार से युक्त हो जा, ये सारा बदलाव ये तेरे जीवन में आ जाए, ये सबसे बड़ी क्रांति घटित हो जाए। ऐसी क्रांति घटित जिसके जीवन में भी हुई, वाकई ही उनके नगमे गाए जा रहे हैं कि यही एक साकत प्रवृत्ति वाला साधु बन गया, ये जो ठग था ये सज्जन बन गया, ये राक्षस प्रवृत्ति वाला ये नरम हृदय वाला बन गया, जो कल दूसरों को दुख देकर भी और दूसरों को दुखी होते देख के नाचता गाता था, उसके लिए खुशी इसी बात की थी कि औरों को दुख मिल रहा है, ये नाचता गाता था उसमें खुशी मनाता था, और आज यही है कि दूसरे का एक आंसू गिरता है तो ये भी इसके भी आंसू बह उठते हैं, ऐसा इसका दया का भाव बन गया है, ये क्रूर और कठोर हृदय वाला ये दयालु हृदय वाला बन गया है। तो ऐसी क्रांति कमाल की क्रांति है जो जिसके जीवन में घट जाती है। तो ऐसी क्रांति हर किसी के जीवन में घटे जो अभी भी संभले नहीं हैं, जो अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं, जो अभी भी उसी तरह से चतुराइयों का सहारा ले रहे हैं, जो अभी भी अहम और अभिमान के नशे में चूर हैं, ताकतों के नशे में चूर हैं, जो उसी प्रकार से कुरूपता को प्राप्त किए हुए हैं, उनके जीवन में भी ये क्रांति घटित हो जाए, अंधकार उजाले में तब्दील हो जाए, और उजाले में तब्दील होगा उजाले के कारण ही। अगर अंधकार को उजाले में तब्दील होना है तो वो उजाला ही साधन बनेगा, अगर बुझा हुआ दीपक है तो उसका जगना भी एक जगे हुए दीपक के द्वारा ही संभव है, लाख बुझे हुए दीपकों से एक बुझा हुआ दीपक नहीं जल पाएगा। अगर अंधकार को उजाले में तब्दील होना है तो उजाला ही सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रकार से अज्ञानता का दूर होना ज्ञान के कारण ही है। इसीलिए यहाँ पर आज भी महापुरुष भक्त जनों ने ज्ञान की बात की है, ब्रह्म ज्ञान की बात की है कि श्रद्धावान लपते ज्ञानम, कि इस प्रकार से ये ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, ये ब्रह्म की प्राप्ति यानी कि ज्ञान उजाला जीवन में आ जाना, जैसे कबीर जी के जीवन में आ गया, जिस प्रकार से मीराबाई के जीवन में आ गया, बुल्ले शाह जी के जीवन में आ गया, रविदास जी के जीवन में आ गया, तुकाराम जी के जीवन में आ गया, इस तरह से ये जो उजाला हर किसी के जीवन में आ जाए, हर मन में रोशनी हो जाए, हर आत्मा रोशन हो जाए, यही एक महापुरुष संत जन ये उपकार कर रहे हैं, ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि दातार प्रभु कृपा करे कि ये सुमति हर इंसान को मिल जाए, और ये सुमति साधु ते पाई, ये सुमति साधु से मिलती है, ब्रह्म ज्ञानियों से मिलती है, इसीलिए नवदा भक्ति में भगवान राम ने पहला कदम ही यही बताया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि पहला ही कदम संतों का संग, कि ये सुमति साधु ते पाई, कि साधु संतों से ही ब्रह्म ज्ञानियों से ही ये सुमति मिलती है, ये ढंग मिलता है, ये सलीका मिलता है। वरना हमें ढंग बताने वाले बतेरे हैं, दोस्त मित्र मिल जाएंगे जो ऐसा ढंग बताएंगे कि हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हमें भी नशों में डाल देंगे, हमें भी ड्रग्स में डाल देंगे, हमें भी ऐसा प्रेरित मति के ऊपर पर्दा डाल देंगे कि फलां को मार देते हैं, उसका सामान लूट लेते हैं, उनसे भी हम प्रेरणाएं ले रहे हैं, वो भी हमें प्रेरित करके और बहाव में बहा के ले जाते हैं। लेकिन ये प्रेरणा लेनी कि जिससे लोक और परलोक दोनों सवर जाएं, ऐसी प्रेरणा हर कोई ले, कबीर जी से प्रेरणा ले, तमाम भक्तों से प्रेरणा ले, तमाम ज्ञानियों से संतों से प्रेरणा लें जिन्होंने सत्य को जाना है, जिन्होंने प्रभु को जाना है, इसको अंग संग जानकर इसकी भक्ति कर रहे हैं, ये जो इसका नूर घटघट में देख रहे हैं, जिनके लिए ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बनाई, जिनके लिए कोई पराया कोई बेगाना नहीं है, उनकी मति को अपना लिया जाए और इस धरती को जन्नत बना लिया जाए, यही एक प्रार्थना, यही शुभकामना, यही अरदास ये की जा रही है, ताकि हर इंसान का भला हो जाए, हर इंसान का इस संसार में आया हुआ ये सफल हो जाए, यही एक शुभकामना, यही प्रार्थना और ये अरदास ये की जा रही है कि ऐसी दातार हर किसी के ऊपर कृपा करे, हर किसी को ऐसी सुमति मिल जाए, ताकि कहीं के भी हैं, बिहार के हैं या झारखंड के हैं, पंजाब के हैं या दिल्ली के हैं, ये घटनाएं तो हो ही रही हैं, दिल्ली राजधानी होकर भी वहाँ पर कैसे कैसे कुकर्म कर रहे हैं इंसान, इतनी वैश्याना हरकतें कर रहे हैं, और वही बात अन्य प्रांतों में भी लागू होती है, कहाँ पर इंसान नहीं भटके हुए हैं, कहाँ पर मानव जाति को कलंकित नहीं किया जा रहा है, विश्व के अन्य मुल्कों में भी हमें मिसालें मिलती हैं। तो इस तरह से ये कोई ये बात नहीं है कि केवल एक ही हिस्से में कहीं पर ऐसे विपरीत रास्ते पे चलने वाले हैं, या केवल एक भाषा वाले ही हैं, या केवल एक ही संस्कृति वाले ही हैं, नहीं, संभले हुए भी किसी जाति किसी भाषा वाले हो सकते हैं, और भटके हुए भी किसी भाषा किसी बिरादरी किसी कौम के हो सकते हैं। ये कोई एक किसी भाषा के साथ संस्कृति के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। तो जैसे शायर लोगों ने भी कहा है, ऐसी ऐसी पंक्तियां अक्सर हम पढ़ते सुनते हैं कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो काम इंसान बुरा करता है वो इंसान बुरा है। ये कोई पर हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है, ये कोई सिख और ईसाई की बात नहीं है, ये कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन की बात नहीं है, ये कोई मर्द और औरत की बात नहीं है, ये कोई महल में रहने वाले या कुटिया में रहने वाले की बात नहीं है, ये काले रंग की चमड़ी या गोरे रंग की चमड़ी वाले की बात नहीं है, ये पढ़ा हुआ या अनपढ़ा है, ये कोई सवाल नहीं है। भलाई और बुराई, नेकी और बदी, प्यार और नफरत, संकीर्णता और विशालता, ये दोनों ही पहलू ये कहीं पर भी हो सकते हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर भी ये विपरीत पहलू हैं, इनसे निजात मिले, ऐसे रोग से निजात मिले हर किसी को, क्योंकि इससे भयानक रोग और कोई हो ही नहीं सकता है। तो इन तमाम ऐसे रोगों से हर किसी को निजात मिले, यही महापुरुष संत जन विधि बता रहे हैं, यही उपचार का ढंग बता रहे हैं, ऐसी सोझी दे रहे हैं, ऐसी समझ दे रहे हैं, और जो बात को समझ गया उसने तो अपना सवार लिया, और जो ना समझा उसने तो अपना बिगाड़ा ही है, पहले भी बिगाड़ा है, आगे भी बिगाड़ता रहेगा। इसलिए बिगाड़ नहीं, एक संवरने की तरफ चलें, संवरे भी और संवारे भी, संभले भी और संभाले भी। आप भी पार उतरें और औरों को भी पार उतारें। इस कदर की मति हर किसी को प्राप्त हो, यही एक अरदास प्रार्थना की जा रही है, यही एक शुभकामना की जा रही है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि समय काफ़ी अधिक हो चुका है, और लगातार सुबह से ही आप ऐसा योगदान दे रहे हैं। पहले यहीं आसपास के इलाके में सड़कों पर से गुज़रते हुए आप यही मानवता का पैगाम दे रहे थे, यही भाईचारे का पैगाम दे रहे थे, यही एक मिलवर्तन का पैगाम दे रहे थे, और फिर उसके बाद इस सत्संग के रूप में भी उसी पैगाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा। सत्संग जी धन।
जो बोले तिस बल्लेहार, सभी मिलजुल करके महात्माओं के साथ सुमरन में साथ दें।